Cambridge Assessment, International Education. Cambridge IGCSE, Hindi as a Second Language. Specimen Paper 2, Listening.
अभ्यास एक, आप 8 संक्षिप्त संवाद सुनेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर चुनिए और उचित खाने में सही का निशान लगाइए। आप प्रत्येक संवाद को 2 बार सुनेंगे। प्रश्न एक, नितिन का फोन कहाँ गुम हुआ होगा?
क्या बात हुई नितिन?
मेरा फोन गुम हो गया। मुझे याद है मैंने घर से तुम्हें संदेश भेजा था और उसके बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचकर फोन पर गेम खेल रहा था। मुझे पक्का याद है बस में चढ़ने से पहले मैंने उसे बस्ते में डाला था। ज़रूर बस में ही गिरा होगा क्योंकि बाद में जब मैंने स्कूल में अपना बस्ता टटोला तो फोन नहीं था।
क्या बात हुई नितिन?
मेरा फोन गुम हो गया। मुझे याद है मैंने घर से तुम्हें संदेश भेजा था और उसके बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचकर फोन पर गेम खेल रहा था। मुझे पक्का याद है बस में चढ़ने से पहले मैंने उसे बस्ते में डाला था। ज़रूर बस में ही गिरा होगा क्योंकि बाद में जब मैंने स्कूल में अपना बस्ता टटोला तो फोन नहीं था। प्रश्न दो, दोस्तों ने दोपहर के बाद क्या करने का निश्चय किया?
आज भीमताल में हम दोपहर के बाद खाली हैं।
मैंने सुना है यहाँ की पैराग्लाइडिंग मशहूर है।
उसके बजाय वहाँ नाव चलाने के बारे में क्या ख्याल है?
बुरा विचार नहीं है पर मेरा मन कोने के द्वीप पर बना मंदिर देखने का है।
मन तो मेरा भी है पर उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। अगर साइकिल पर घूमे तो?
ठीक है, मंदिर किसी और दिन जा सकते हैं।
आज भीमताल में हम दोपहर के बाद खाली हैं।
मैंने सुना है यहाँ की पैराग्लाइडिंग मशहूर है।
उसके बजाय वहाँ नाव चलाने के बारे में क्या ख्याल है?
बुरा विचार नहीं है पर मेरा मन कोने के द्वीप पर बना मंदिर देखने का है।
मन तो मेरा भी है पर उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। अगर साइकिल पर घूमे तो?
ठीक है, मंदिर किसी और दिन जा सकते हैं। प्रश्न तीन, कौन सा पंडाल अध्यापिका के सबसे समीप था?
छात्रों, उद्योग मेले में आपका स्वागत है। यहाँ करने को बहुत कुछ है। मेले के दूसरे कोने पर बने विज्ञान और तकनीकी के पंडाल में आप जैकपॉट मशीनों के साथ खेल सकते हैं। उसके साथ ही जलवायु पंडाल है जहाँ आप जलवायु के बारे में जान सकते हैं। यहाँ हम लोगों के सामने साहित्य पंडाल है जहाँ आप मनपसंद लेखकों से मिल सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे खेल पंडाल है जहां आप व्यायाम की नई मशीनें आजमा सकते हैं। छात्रों, उद्योग मेले में आपका स्वागत है। यहां करने को बहुत कुछ है। मेले के दूसरे कोने पर बने विज्ञान और तकनीकी के पंडाल में आप जैकपॉट मशीनों के साथ खेल सकते हैं। उसके साथ ही जलवायु पंडाल है जहां आप जलवायु के बारे में जान सकते हैं। यहां हम लोगों के सामने साहित्य पंडाल है जहां आप मनपसंद लेखकों से मिल सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे खेल पंडाल है जहां आप व्यायाम की नई मशीनें आजमा सकते हैं।
प्रश्न चार, किस सब्जी ने प्रतियोगिता जीती?
क्या तुमने सब्जी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था?
हाँ, मुझे मेरी गाजरों के लिए कांस्य पदक मिला। मुझे लगता था कि कंचन की भिंडियों को पहला पुरस्कार मिलेगा पर उसे कुछ नहीं मिला। दूसरा पुरस्कार रजत को मिला, उसके बैगन बहुत बड़े बड़े थे। पहला पुरस्कार फूल गोभी की अद्भुत प्रदर्शनी को मिला, पर पता नहीं वो किसकी थी।
क्या तुमने सब्जी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था?
हाँ, मुझे मेरी गाजरों के लिए कांस्य पदक मिला। मुझे लगता था कि कंचन की भिंडियों को पहला पुरस्कार मिलेगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। दूसरा पुरस्कार रजत को मिला। उसके बैगन बहुत बड़े बड़े थे। पहला पुरस्कार फूल गोभी की अद्भुत प्रदर्शनी को मिला, पर पता नहीं वो किसकी थी।
प्रश्न 5। दोस्तों ने कहाँ जाना तय किया?
क्या तुम सर्कस देखने चलना चाहती हो?
नहीं, मैं तो कोई अच्छी फिल्म देखना चाहूंगी।
ठहरो, रविवार से तो रजत की प्रदर्शनी शुरू हो रही है।
कोई नहीं, वो तो महीने भर चलेगी। हम कभी भी जा सकते हैं। अब बताओ, फिल्म देखने चलना है या नहीं? वरना मुझे शॉपिंग करने जाना है।
चलो ठीक है। क्या तुम सर्कस देखने चलना चाहती हो?
नहीं, मैं तो कोई अच्छी फिल्म देखना चाहूंगी।
ठहरो, रविवार से तो रजत की प्रदर्शनी शुरू हो रही है।
कोई नहीं, वो तो महीने भर चलेगी। हम कभी भी जा सकते हैं। अब बताओ, फिल्म देखने चलना है या नहीं? वरना मुझे शॉपिंग करने जाना है।
चलो ठीक है।
प्रश्न 6। देव कल कैसे स्कूल जाएगा?
माँ, बस ने परेशान कर रखा है। हमेशा देरी से आती है। मैं अब से साइकिल से स्कूल जाना शुरू करूंगा।
ठीक है देव, पर पहले तुम्हें तुम्हारी साइकिल के लिए बत्तियां खरीदनी पड़ेंगी।
तो ठीक है, मैं अभी जाकर दुकान से ले आता हूँ।
वे तो बंद होंगी। ऐसा करते हैं, अभी हमेशा की तरह बस ले लो और मैं तुम्हें कल स्कूल के बाद कार से साइकिल की दुकान पर ले चलूंगी। ठीक है?
हाँ, बढ़िया। शुक्रिया माँ। माँ, बस ने परेशान कर रखा है। हमेशा देरी से आती है। मैं अब से साइकिल से स्कूल जाना शुरू करूंगा।
ठीक है देव, पर पहले तुम्हें तुम्हारी साइकिल के लिए बत्तियां खरीदनी पड़ेंगी।
तो ठीक है, मैं अभी जाकर दुकान से ले आता हूँ।
वे तो अब बंद होंगी। ऐसा करते हैं, अभी हमेशा की तरह बस ले लो और मैं तुम्हें कल स्कूल के बाद कार से साइकिल की दुकान पर ले चलूंगी। ठीक है?
हाँ, बढ़िया। शुक्रिया माँ।
प्रश्न 7। छात्र सांस्कृतिक समारोह में क्या पहनने वाला है?
हेलो नितिन, सुनो, कल के सांस्कृतिक समारोह के लिए मुझे तुम्हारा वह कुर्ता चाहिए। तुम चाहो तो बदले में मैं तुम्हें अपना जापानी कोट दे सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि स्कूल की वर्दी ही पहनूं या पार्टी सूट। तुम्हारी सरस्वती पूजा की तस्वीरें देखकर मेरे मन में भारतीय वेशभूषा का विचार आया। पायजामा मेरे पास है। बाय। हेलो नितिन, सुनो, कल के सांस्कृतिक समारोह के लिए मुझे तुम्हारा वह कुर्ता चाहिए। तुम चाहो तो बदले में मैं तुम्हें अपना जापानी कोट दे सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि स्कूल की वर्दी ही पहनूं या पार्टी सूट। तुम्हारी सरस्वती पूजा की तस्वीरें देखकर मेरे मन में भारतीय वेशभूषा का विचार आया। पायजामा मेरे पास है। बाय।
प्रश्न 8। महिला सोसाइटी की मीटिंग में क्यों नहीं जा सकी थी?
बहन जी, आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं आई। खांसी नहीं गई क्या?
जी नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ऋषि के पांव में मोच आ गई थी।
अरे, परसों तो हमने टेनिस खेला था जिम से लौटने के बाद।
वहीं से कुछ कर लाए, बस इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सारा दिन उसी में लग गया।
बहन जी, आप सोसाइटी की मीटिंग में नहीं आई। खांसी नहीं गई क्या?
जी नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ऋषि के पांव में मोच आ गई थी।
अरे, परसों तो हमने टेनिस खेला था जिम से लौटने के बाद।
वहीं से कुछ कर लाए, बस इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सारा दिन उसी में लग गया।
अभ्यास एक समाप्त हुआ, अब आप अभ्यास दो पर ध्यान दीजिए। अभ्यास दो, आप 5 संक्षिप्त संवाद सुनेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी या सी में से सही उत्तर चुनिए और उचित खाने में सही का निशान लगाइए। आप प्रत्येक संवाद को 2 बार सुनेंगे। आप एक अध्यापिका को एक प्रसिद्ध खेल पार्क की सैर के लिए छात्रों को कुछ निर्देश देते सुनेंगे। अब प्रश्न 9 और 10 पर ध्यान दें।
छात्रों ध्यान से सुने। पहुंचने पर देश के एक जाने माने क्रिकेट कोच हमारा स्वागत करेंगे और पहले आपको अच्छी बल्लेबाजी की कुछ तकनीकें सिखाएंगे। उसके बाद वे आपको मैदान दिखाने ले जाएंगे जहां क्रिकेट के अलावा टेनिस, फुटबॉल और कलाबाजी की सुविधाएं भी हैं। हम खाने के समय तक स्कूल लौट आएंगे, इसलिए खाना ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीने के पानी की बोतल ले चलना अच्छा रहेगा। आप सबको लिखने के लिए नोटबुक और पेन मिलेगा, जिनके साथ एक स्मारक भी होगा। छात्रों ध्यान से सुने। पहुंचने पर देश के एक जाने माने क्रिकेट कोच हमारा स्वागत करेंगे और पहले आपको अच्छी बल्लेबाजी की कुछ तकनीकें सिखाएंगे। उसके बाद वे आपको मैदान दिखाने ले जाएंगे जहां क्रिकेट के अलावा टेनिस, फुटबॉल और कलाबाजी की सुविधाएं भी हैं। हम खाने के समय तक स्कूल लौट आएंगे, इसलिए खाना ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीने के पानी की बोतल ले चलना अच्छा रहेगा। आप सबको लिखने के लिए नोटबुक और पेन मिलेगा, जिनके साथ एक स्मारक भी होगा।
आप 2 मित्रों को ऐसे संगीत साइट की चर्चा करते सुनेंगे जिसका वे दोनों प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न 11 और 12 पर ध्यान दें।
मुझे एक लाजवाब संगीत साइट मिला है, surtal.com।
अरे यही तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हें कैसे मिला?
असल में दीदी संगीत की दीवानी है। वो इंटरनेट पर तरह तरह की पत्रिकाएं देखती रहती है, लेकिन पता है उसने भी इसके बारे में नहीं सुना था। मैं दरअसल उसी के लिए एक अच्छे से तानपुरे की तलाश में साइट छान रही थी, उसी चक्कर में मेरी नजर इस पर पड़ी।
मुझे तो इनके लेखकों की संगीत समीक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं।
बिल्कुल, बड़ी सरल भाषा में होती हैं। मुझे इनके गानों के वीडियो भी अच्छे लगते हैं।
पता नहीं, कुछ एक तो बड़े बोर होते हैं, पर यहाँ संगीत समारोहों के टिकट रियायत पर मिल जाते हैं और प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं।
हाँ, पर जो गीत पुरस्कार के रूप में डाउनलोड करने को मिलते हैं वे इतने अच्छे नहीं होते। मुझे एक लाजवाब संगीत साइट मिला है, surtal.com।
अरे यही तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हें कैसे मिला?
असल में दीदी संगीत की दीवानी है। वो इंटरनेट पर तरह तरह की पत्रिकाएं देखती रहती है, लेकिन पता है उसने भी इसके बारे में नहीं सुना था। मैं दरअसल उसी के लिए एक अच्छे से तानपुरे की तलाश में साइट छान रही थी, उसी चक्कर में मेरी नजर इस पर पड़ी।
मुझे तो इनके लेखकों की संगीत समीक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं।
बिल्कुल, बड़ी सरल भाषा में होती हैं। मुझे इनके गानों के वीडियो भी अच्छे लगते हैं।
पता नहीं, कुछ एक तो बड़े बोर होते हैं, पर यहाँ संगीत समारोहों के टिकट रियायत पर मिल जाते हैं और प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं।
हाँ, पर जो गीत पुरस्कार के रूप में डाउनलोड करने को मिलते हैं वे इतने अच्छे नहीं होते। आप दो छात्रों को छुट्टियों के दौरान पढ़ी किताबों के बारे में बातें करते सुनेंगे। अब प्रश्न 13 और 14 पर ध्यान दें।
कोई किताब पढ़ी हाल में सारिका?
हाँ, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक अजीब सी किताब मिली थी, शक्कर के इतिहास पर। पन्ने पलटने लगी तो बस एक ही सांस में पड़ गई। क्या तुम्हें मालूम था तेज कि पूरी दुनिया को शक्कर भारत ने दी?
नहीं, दिलचस्प बात है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। पर मुझे इतिहास की किताबें थोड़ी लंबी लगती हैं और मैं जल्दी ही हथियार डाल देता हूँ। मुझे रहस्य रोमांच की किताबें अधिक भाती हैं। बचपन में मैं डरावनी कहानियां भी पसंद किया करता था, लेकिन मुझे लगता है वे सब एक जैसी होती हैं। कोई किताब पढ़ी हाल में सारिका?
हाँ, मेरे जन्मदिन पर मुझे एक अजीब सी किताब मिली थी, शक्कर के इतिहास पर। पन्ने पलटने लगी तो बस एक ही सांस में पड़ गई। क्या तुम्हें मालूम था तेज कि पूरी दुनिया को शक्कर भारत ने दी?
नहीं, दिलचस्प बात है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। पर मुझे इतिहास की किताबें थोड़ी लंबी लगती हैं और मैं जल्दी ही हथियार डाल देता हूँ। मुझे रहस्य रोमांच की किताबें अधिक भाती हैं। बचपन में मैं डरावनी कहानियां भी पसंद किया करता था, लेकिन मुझे लगता है वे सब एक जैसी होती हैं।
आप अनिल को अपनी दोस्त के लिए एक टीवी कार्यक्रम के बारे में टेलीफोन संदेश छोड़ते सुनेंगे। अब प्रश्न 15 और 16 पर ध्यान दें।
हेलो मीरा, अनिल बोल रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कल रात की आखिरी कड़ी नहीं देखी। खैर, कौन जीता ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, खुद देखना बाद में कि पिछले हफ्ते तक क्या लग रहा था और अंत में क्या हुआ। मैं तो नतीजे को पचा नहीं पा रहा हूं। और हाँ, मैंने जज और गायिका स्नेहा सरगम का एक इंटरव्यू सुना। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने वियना जाकर ओपेरा गायन भी सीखा है। वह जल्दी ही एक नया शो भी शुरू करने जा रही है। पर उसने बार बार पूछे जाने पर भी उसके स्वरूप और नाम के बारे में कुछ नहीं बताया। हेलो मीरा, अनिल बोल रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने कल रात की आखिरी कड़ी नहीं देखी। खैर, कौन जीता ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, खुद देखना बाद में कि पिछले हफ्ते तक क्या लग रहा था और अंत में क्या हुआ। मैं तो नतीजे को पचा नहीं पा रहा हूं। और हाँ, मैंने जज और गायिका स्नेहा सरगम का एक इंटरव्यू सुना। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने वियना जाकर ओपेरा गायन भी सीखा है। वह जल्दी ही एक नया शो भी शुरू करने जा रही है। पर उसने बार बार पूछे जाने पर भी उसके स्वरूप और नाम के बारे में कुछ नहीं बताया।
आप एक मशहूर अभिनेत्री जैस्मिन के इंटरव्यू का एक भाग सुनेंगे। अब प्रश्न 17 और 18 पर ध्यान दें।
नमस्कार जैस्मिन जी, क्या ये सच है कि अब आप भारत में बस गई हैं?
जी हाँ, शुरू में मेरे पति अकेले आए थे क्योंकि उनको कंपनी ने यहाँ एक नया कारोबार जमाने के लिए भेजा था। एक साल के बाद मैं भी बच्चों के साथ यहीं आ गई क्योंकि यहाँ का फिल्म और टेलीविजन उद्योग तो दुनिया में सबसे बड़ा है। मेरे लिए यहाँ ज्यादा काम है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को यहाँ की जीवन शैली में ढालने की कोशिश कर रही हूँ।
चलिए, अपनी नई फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए।
जी, अभी तक तो मैंने ज्यादातर मार धाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया है, क्योंकि वे हर तरह के दर्शक को भाती हैं। लेकिन मेरी नई फिल्म कुछ कठिन सामाजिक सवालों पर है, इसलिए भले ही ये धमाकेदार ना साबित हो, पर देखने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी।
नमस्कार जैस्मिन जी, क्या ये सच है कि अब आप भारत में बस गई हैं?
जी हाँ, शुरू में मेरे पति अकेले आए थे, क्योंकि उनको कंपनी ने यहाँ एक नया कारोबार जमाने के लिए भेजा था। एक साल के बाद मैं भी बच्चों के साथ यहीं आ गई, क्योंकि यहाँ का फिल्म और टेलीविजन उद्योग तो दुनिया में सबसे बड़ा है, मेरे लिए यहाँ ज्यादा काम है। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को यहाँ की जीवन शैली में ढालने की कोशिश कर रही हूँ।
चलिए, अपनी नई फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए।
जी, अभी तक तो मैंने ज्यादातर मार धाड़ वाली फिल्मों में ही काम किया है, क्योंकि वे हर तरह के दर्शक को भाती हैं। लेकिन मेरी नई फिल्म कुछ कठिन सामाजिक सवालों पर है, इसलिए भले ही ये धमाकेदार ना साबित हो, पर देखने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी।
अभ्यास 2 समाप्त हुआ, अब आप अभ्यास 3 पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3। आप जीव विज्ञानी डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव से मगरमच्छों के बारे में एक वार्ता सुनेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी या सी में से सही उत्तर चुनिए और उचित खाने में सही का निशान लगाइए। ये वार्ता आपको 2 बार सुनाई जाएगी। अब प्रश्न 19 से 26 पर ध्यान दें।
मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं आज मगरमच्छों के बारे में बात करने वाला हूँ। मगरमच्छों की कुल मिलाकर 14 प्रजातियाँ हैं। वे अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन कोई भी ठंडे तापमान को सहन नहीं कर पाता। रेंगने वाले अन्य जानवरों की तरह इनके भीतर भी स्वयं को गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ये गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। मेरा अध्ययन गंगा नदी के मगरमच्छों पर है। गंगा नदी का मगरमच्छ औसतन 55 वर्ष के आसपास जीता है, पर इनमें से कुछ भाग्यशाली 75 साल की उम्र तक भी जी सकते हैं, जो इंसानों की 80 वर्ष की आयु के करीब है, कम से कम मेरे देश में। गंगा के मगरमच्छों की पीठ गहरे भूरे रंग की होती है और पेट पीलापन लिए होता है, हालांकि कीचड़ इनके असली रंग को छिपा सकता है। ये आमतौर पर खारे पानी में नहीं रहते और जो तेज बहाव वाली नदियों में पाए जाते हैं, उनका रंग मगरमच्छों की दूसरी प्रजातियों की तुलना में आमतौर पर हल्का होता है। मगरमच्छ अक्सर मांसाहारी होते हैं, पर इनमें से कुछ कभी कभार अपनी खुराक में दूसरे भोजन भी शामिल कर लेते हैं। बेशक मगरमच्छ घास खाने के लिए नहीं बने हैं, पर वे आसपास के पेड़ों से पानी में गिरने वाले फल को खुशी खुशी खा लेते हैं और पत्तों को हटा देते हैं। ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। मगरमच्छों के दांत भी दिलचस्प होते हैं। उनके मुंह में एक समय में 60 से लेकर 110 तक दांत हो सकते हैं। जब वे गिरते हैं तो उनकी जगह नए उगाते हैं। यह प्रक्रिया संभवतः 50 बार दोहराई जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक मगरमच्छ के उसके जीवन काल में 4000 तक दांत हो सकते हैं। मगरमच्छों के जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। काटते समय उनके जबड़े का दबाव वायुमंडल के दबाव से 350 गुना के आसपास होता है। आप सोचते होंगे कि शायद शार्क भी उतनी ही शक्ति से काटती होगी, पर नहीं। बड़ी से बड़ी शार्क भी वायुमंडल के दबाव से 35 गुना शक्ति से ही काट सकती है, जिसका अर्थ हुआ कि मगरमच्छ का जबड़ा शार्क के जबड़े से 10 गुना शक्तिशाली होता है। शेर का काटना भी मगरमच्छ के काटने से लगभग 8 गुना कमजोर होता है, और भालू के काटने में वायुमंडल से करीब 85 गुना शक्ति होती है, यानी मगरमच्छ का काटना उससे भी 4 गुना से अधिक शक्तिशाली हुआ। मगरमच्छ बेहद तेज तैराक भी होते हैं, जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति पकड़ सकते हैं। उनकी पूंछ उन्हें ताकत देती है और मुड़ने के लिए वे अपने पैरों का सहारा लेते हैं। उनके सिर बाकी शरीर की तुलना में स्थिर रहते हैं ताकि वे इर्द गिर्द की घटनाओं पर नजर रख सकें। जिन मगरमच्छों का अध्ययन मैं कर रहा हूं, वे बहुत सा समय सोने में बिताते हैं। कभी कभी वे अपनी आंखें बंद किए बिना या खतरे की आशंका में एक आंख खुली छोड़कर सोते हैं। वे अपना मुंह खोलकर लेटना पसंद करते हैं, जो उनका अपने आप को ठंडा रखने का एक तरीका है, और ऐसा करते हुए प्रायः वे कुछ नींद भी पूरी कर लेते हैं। कभी कभी वे पानी पर तैरते हुए भी सो लेते हैं।
अब आप वार्ता को दोबारा सुनेंगे।
मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं आज मगरमच्छों के बारे में बात करने वाला हूं। मगरमच्छों की कुल मिलाकर 14 प्रजातियां हैं। वे अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन कोई भी ठंडे तापमान को सहन नहीं कर पाता। रेंगने वाले अन्य जानवरों की तरह इनके भीतर भी स्वयं को गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ये गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। मेरा अध्ययन गंगा नदी के मगरमच्छों पर है। गंगा नदी का मगरमच्छ औसतन 55 वर्ष के आसपास जीता है, पर इनमें से कुछ भाग्यशाली 75 साल की उम्र तक भी जी सकते हैं, जो इंसानों की 80 वर्ष की आयु के करीब है, कम से कम मेरे देश में। गंगा के मगरमच्छों की पीठ गहरे भूरे रंग की होती है और पेट पीलापन लिए होता है, हालांकि कीचड़ इनके असली रंग को छिपा सकता है। ये आमतौर पर खारे पानी में नहीं रहते, और जो तेज बहाव वाली नदियों में पाए जाते हैं उनका रंग मगरमच्छों की दूसरी प्रजातियों की तुलना में आमतौर पर हल्का होता है। मगरमच्छ अक्सर मांसाहारी होते हैं, पर इनमें से कुछ कभी कभार अपनी खुराक में दूसरे भोजन भी शामिल कर लेते हैं। बेशक मगरमच्छ घास खाने के लिए नहीं बने हैं, पर वे आसपास के पेड़ों से पानी में गिरने वाले फल को खुशी खुशी खा लेते हैं और पत्तों को हटा देते हैं। ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। मगरमच्छों के दांत भी दिलचस्प होते हैं। उनके मुंह में एक समय में 60 से लेकर 110 तक दांत हो सकते हैं। जब वे गिरते हैं तो उनकी जगह नए उगाते हैं। यह प्रक्रिया संभवतः 50 बार दोहराई जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक मगरमच्छ के उसके जीवन काल में 4000 तक दांत हो सकते हैं। मगरमच्छों के जबड़े बेहद शक्तिशाली होते हैं। काटते समय उनके जबड़े का दबाव वायुमंडल के दबाव से 350 गुना के आसपास होता है। आप सोचते होंगे कि शायद शार्क भी उतनी ही शक्ति से काटती होगी, पर नहीं। बड़ी से बड़ी शार्क भी वायुमंडल के दबाव से 35 गुना शक्ति से ही काट सकती है, जिसका अर्थ हुआ कि मगरमच्छ का जबड़ा शार्क के जबड़े से 10 गुना शक्तिशाली होता है। शेर का काटना भी मगरमच्छ के काटने से लगभग 8 गुना कमजोर होता है, और भालू के काटने में वायुमंडल से करीब 85 गुना शक्ति होती है, यानी मगरमच्छ का काटना उससे भी 4 गुना से अधिक शक्तिशाली हुआ। मगरमच्छ बेहद तेज तैराक भी होते हैं, जो 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति पकड़ सकते हैं। उनकी पूंछ उन्हें ताकत देती है, और मुड़ने के लिए वे अपने पैरों का सहारा लेते हैं। उनके सिर बाकी शरीर की तुलना में स्थिर रहते हैं ताकि वे इर्द गिर्द की घटनाओं पर नजर रख सकें। जिन मगरमच्छों का अध्ययन मैं कर रहा हूँ वे बहुत सा समय सोने में बिताते हैं। कभी कभी वे अपनी आंखें बंद किए बिना या खतरे की आशंका में एक आंख खुली छोड़कर सोते हैं। वे अपना मुंह खोलकर लेटना पसंद करते हैं, जो उनका अपने आप को ठंडा रखने का एक तरीका है, और ऐसा करते हुए प्रायः वे कुछ नींद भी पूरी कर लेते हैं। कभी कभी वे पानी पर तैरते हुए भी सो लेते हैं।
अभ्यास 3 समाप्त हुआ। अब आप अभ्यास 4 पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4। आप 6 लोगों को उनके क्लबों के बारे में बात करते सुनेंगे। प्रश्न 27 से 32 के लिए कथन सूची ए से एच में से कौन सा कथन किस वक्ता का है चुनकर बताएं। सही अक्षर ए से एच को उत्तर रेखा पर लिखें। हर अक्षर को केवल एक बार लिखें। 2 अक्षर अतिरिक्त हैं जिनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप वक्ताओं की बातें 2 बार सुनेंगे। अब कथन सूची ए से एच को पढ़ें। वक्ता 1।
मैंने अपने नाटक क्लब में 5 महीने से जाना शुरू किया और मैंने अभी तक एक भी सत्र नहीं छोड़ा है। मैं वहां कई दिलचस्प नए लोगों से मिली हूँ। मैं असल में अपना अभिनय बेहतर बनाना चाहती थी और सोचा कि ये एक अच्छा तरीका होगा बेहतर बनाने का। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई हूँ, क्योंकि सत्र सप्ताह में केवल एक बार होते हैं। 2 या 3 बार भी होते तो मुझे खुशी होती। वक्ता 2।
मैं आजकल अपने नौकायन क्लब के हर सत्र में हमेशा नहीं जा पाता। मैं वहां शुरू में इसलिए गया था क्योंकि मैं इस इलाके में नया नया आया था और मैंने सोचा कि अपनी उम्र वालों से मिलने का यह एक अच्छा तरीका होगा। मुझे निराशा नहीं हुई, इसलिए मैं तो हर उस शख्स को किसी क्लब में शामिल होने की सलाह दूंगा जिसका लक्ष्य मेरे जैसा हो। वक्ता 3।
मैं बरसों से स्कूल के फिल्म क्लब की सदस्य हूँ। हम असल में हमारे नाट्यकला अध्यापक की चुनी हुई कोई फिल्म देखते हैं। ये सब ठीक है, पर मैं अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पाती कि देखने के बाद यदि हम फिल्म पर चर्चा कर पाते और वो कैसे बनी इसका शोध वगैरह कर पाते तो ज्यादा मजा आता। बहरहाल, मेरी अभी क्लब जाना बंद करने की कोई योजना नहीं है। वक्ता 4।
मैं हर सप्ताहांत में कंप्यूटर खेलों के एक क्लब में जाता हूँ। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा फैसला था क्योंकि हम खूब मजे करते हैं। असल में यदि किसी सप्ताह में किसी कारणवश नहीं जा पाता हूँ तो मेरा मूड वाकई खराब हो जाता है। हम खाली एक काम करते हैं, खेलने का, जिससे ज्यादातर लोग शायद उकता जाएं, पर मेरे लिए ये आदर्श है। वक्ता 5।
मेरा गोताखोरी क्लब अद्भुत है। मेरी बहुत सी सहेलियां भी इसकी सदस्या हैं क्योंकि मैं इसकी खूबियां गाती रहती थी। हालांकि जो मजा मुझे समुद्र के सत्रों में आता है, तरणताल के सत्रों का मजा उसके आसपास भी नहीं होता। मुझे जल जीव देखने का शौक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी क्लब जाना बंद कर पाऊंगी। वक्ता 6।
मुझे घुड़सवारी हमेशा से पसंद है, इसलिए मैं घुड़सवारी के लिए हर सप्ताह एक स्थानीय क्लब में जाता हूँ। कुछ लोगों के पास अपने घोड़े हैं और वे सप्ताह में 4 से 5 बार जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी घुड़सवारी की कला को जल्दी निखार लिया है। यहाँ कुछ नए चेहरे आए तो अच्छा लगेगा, खासकर मेरी उम्र के लोग जिनके साथ मैं दोस्ती कर सकूं। हो सकता है मैं अपने कुछ दोस्तों को सदस्यता के लिए राजी करने की कोशिश करूं।
अब आप इन 6 वक्ताओं को दोबारा सुनेंगे।
वक्ता 1।
मैंने अपने नाटक क्लब में 5 महीने से जाना शुरू किया और मैंने अभी तक एक भी सत्र नहीं छोड़ा है। मैं वहां कई दिलचस्प नए लोगों से मिली हूं। मैं असल में अपना अभिनय बेहतर बनाना चाहती थी और सोचा कि ये एक अच्छा तरीका होगा बेहतर बनाने का। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई हूं, क्योंकि सत्र सप्ताह में केवल 1 बार होते हैं। 2 या 3 बार भी होते तो मुझे खुशी होती। वक्ता 2।
मैं आजकल अपने नौकायन क्लब के हर सत्र में हमेशा नहीं जा पाता। मैं वहां शुरू में इसलिए गया था क्योंकि मैं इस इलाके में नया नया आया था और मैंने सोचा कि अपनी उम्र वालों से मिलने का यह एक अच्छा तरीका होगा। मुझे निराशा नहीं हुई, इसलिए मैं तो हर उस शख्स को किसी क्लब में शामिल होने की सलाह दूंगा जिसका लक्ष्य मेरे जैसा हो। वक्ता 3।
मैं बरसों से स्कूल के फिल्म क्लब की सदस्य हूँ। हम असल में हमारे नाट्यकला अध्यापक की चुनी हुई कोई फिल्म देखते हैं। ये सब ठीक है, पर मैं अपने आप को ये सोचने से नहीं रोक पाती कि देखने के बाद यदि हम फिल्म पर चर्चा कर पाते और वो कैसे बनी इसका शोध वगैरह कर पाते तो ज्यादा मजा आता। बहरहाल मेरी अभी क्लब जाना बंद करने की कोई योजना नहीं है। वक्ता 4।
मैं हर सप्ताहांत में कंप्यूटर खेलों के एक क्लब में जाता हूं। यह मेरा अभी तक का सबसे अच्छा फैसला था क्योंकि हम खूब मजे करते हैं। असल में यदि किसी सप्ताह में किसी कारणवश नहीं जा पाता हूं तो मेरा मूड वाकई खराब हो जाता है। हम खाली एक काम करते हैं, खेलने का, जिससे ज्यादातर लोग शायद उकता जाएं, पर मेरे लिए ये आदर्श है। वक्ता 5।
मेरा गोताखोरी क्लब अद्भुत है। मेरी बहुत सी सहेलियां भी इसकी सदस्या हैं क्योंकि मैं इसकी खूबियां गाती रहती थी। हालांकि जो मजा मुझे समुद्र के सत्रों में आता है, तरणताल के सत्रों का मजा उसके आसपास भी नहीं होता। मुझे जल जीव देखने का शौक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कभी क्लब जाना बंद कर पाऊंगी। वक्ता 6।
मुझे घुड़सवारी हमेशा से पसंद है, इसलिए मैं घुड़सवारी के लिए हर सप्ताह एक स्थानीय क्लब में जाता हूँ। कुछ लोगों के पास अपने घोड़े हैं और वे सप्ताह में 4 से 5 बार जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी घुड़सवारी की कला को जल्दी निखार लिया है। यहाँ कुछ नए चेहरे आए तो अच्छा लगेगा, खासकर मेरी उम्र के लोग जिनके साथ मैं दोस्ती कर सकूं। हो सकता है मैं अपने कुछ दोस्तों को सदस्यता के लिए राजी करने की कोशिश करूं।
अभ्यास 4 समाप्त हुआ। अब आप अभ्यास 5 पर ध्यान दीजिए। अभ्यास 5। आप इला संजानी के साथ बातचीत सुनेंगे जो किस्सागो हैं यानी कहानियां सुनाती हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए ए बी या सी में से सही उत्तर चुनें और उचित खाने में सही का निशान लगाएं। आप ये बातचीत 2 बार सुनेंगे। अब प्रश्न 33 से 40 पर ध्यान दें।
इला जी, क्या आप बचपन से ही किस्सागो बनना चाहती थीं?
नहीं तो, मैं तो बस छोटी मोटी नौकरी करना चाहती थी। वैसे तो आज़ाद ख्यालों की थी, पर पारंपरिक रूप से परिवार के साथ रहना पसंद करती थी। मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। दोनों सारा दिन काम से बाहर रहते थे, इसलिए जब भी अपनी सहेलियों को परिवार के साथ खेलते खाते या यात्राओं पर जाते देखती तो सोचती थी कि काश मैं भी वो सब कर पाती।
और स्कूल में कैसा माहौल था?
मेरे सहपाठी तो पढ़ाई, स्कूल के अनुशासन और गृह कार्य के दबाव को आसानी से झेल लेते थे, पर मुझे वो वाकई मुश्किल लगता था। मैं बस दोस्तों के साथ गप्पे हाँकने, गाने और बहस करने में उस्ताद थी, इसलिए स्कूल खत्म होते ही मैंने पढ़ाई से पिंड छुड़ा लिया।
तो क्या आपको तुरंत काम मिल गया था?
मेरे पास किसी काम की योग्यता नहीं थी, पर एक दिन एक दोस्त की सलाह पर मैं रेडियो स्टेशन गई। उन्हें किसी ऐसे युवा की तलाश थी जो उनके श्रोताओं की प्रतिक्रिया संभाल सके। काम थोड़ा उबाऊ था, लेकिन कार्यक्रमों पर लोगों की भिन्न भिन्न राय पढ़कर मजा भी आता था। माँ बाप भी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि जो मिलता था उसमें मेरा आने जाने का खर्च ही निकल पाता था।
तो फिर आप किस्सा गोई तक कैसे पहुंची?
किस्सा गोई का किस्सा ये है कि बचपन में जब माँ और पिताजी दोनों काम पर होते थे, तब मेरी देखभाल पड़ोस की एक महिला करती थी, जिन्हें मैं प्यार से नानी बुलाती थी। उनके पास किस्से कहानियों की खान थी, उन्हीं से सुन सुनकर मैं दोस्तों की महफिल में रौब जमाती थी। रेडियो स्टेशन के साथियों को भी इन किस्सों का चस्का लग गया और एक दिन एक बहुत ही लोकप्रिय शो के एंकर ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। फिर क्या था?
फिर क्या हुआ?
हमारे निदेशक ने मुझे एक नया शो शुरू करने को कहा, जिसमें मुझे लोकप्रिय गीतों को किस्से कहानियों में पिरोकर पेश करना था। मेरा शो इतना लोकप्रिय हुआ कि वो एक नई शैली बन गया। हर रेडियो स्टेशन ने उस तरह के शो करने शुरू किए, संगीत समारोहों और रंगारंग कार्यक्रमों का संचालन करने के न्योते आने लगे।
आपकी इस व्यस्तता और बाहर रहने पर घर वालों को कैसा लगता है?
बढ़ती व्यस्तता के साथ साथ मेरी आमदनी भी बढ़ी है, इसलिए माँ बाप बहुत खुश हैं। मेरे पति भी पत्रकार होने की वजह से मेरे काम की व्यस्तताओं को समझते हैं। वे स्वयं घटनाओं को रिपोर्ट करने बाहर जाते रहते हैं और अक्सर देरी से घर लौटते हैं। वे जानते हैं कि हमारे काम में कितने समय और ऊर्जा की जरूरत है।
एक सफल किस्सा गो बनने के लिए क्या किसी विशेष योग्यता की जरूरत है?
यदि आप में दूसरों की बात ध्यान से सुनने का हुनर नहीं है तो आप अच्छी किस्सा गोई नहीं कर सकते। किस्सा गोई को आप पढ़कर नहीं सुनकर ही सीख सकते हैं। लोग आमतौर पर अपने बड़े बुजुर्गों, अध्यापकों और पेशेवर कथकड़ों से किस्से कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जो या तो हमारे अनुभवों से मेल खाते हों या रोचक शैली में सुनाए गए हों।
आजकल आप लोगों के बीच जाकर भी किस्सा गोई करती हैं, कैसा लगता है आपको?
किस्सा गोई का असली मजा लोगों के बीच जाकर कहने में ही है। सुनने वालों के हर्ष, शोक और विस्मय के चढ़ते उतरते स्वर किस्सा गो के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होते हैं। स्टूडियो में बैठकर या मंच पर जाकर किस्से सुनाने की आदत की वजह से शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी, पर झिझक खुलते ही सब सहज हो गया। अब तो मैं सुनने वालों से भी कहती हूं कि अपने अपने किस्से सुनाएं।
अब आप ये बातचीत दोबारा सुनेंगे। इला जी, क्या आप बचपन से ही किस्सा गो बनना चाहती थीं?
नहीं तो, मैं तो बस छोटी मोटी नौकरी करना चाहती थी। वैसे तो आजाद ख्यालों की थी, पर पारंपरिक रूप से परिवार के साथ रहना पसंद करती थी। मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। दोनों सारा दिन काम से बाहर रहते थे, इसलिए जब भी अपनी सहेलियों को परिवार के साथ खेलते, खाते या यात्राओं पर जाते देखती तो सोचती थी कि काश मैं भी वो सब कर पाती।
और स्कूल में कैसा माहौल था?
मेरे सहपाठी तो पढ़ाई, स्कूल के अनुशासन और गृह कार्य के दबाव को आसानी से झेल लेते थे, पर मुझे वो वाकई मुश्किल लगता था। मैं बस दोस्तों के साथ गप्पे हांकने, गाने और बहस करने में उस्ताद थी, इसलिए स्कूल खत्म होते ही मैंने पढ़ाई से पिंड छुड़ा लिया।
तो क्या आपको तुरंत काम मिल गया था?
मेरे पास किसी काम की योग्यता नहीं थी, पर एक दिन एक दोस्त की सलाह पर मैं रेडियो स्टेशन गई। उन्हें किसी ऐसे युवा की तलाश थी जो उनके श्रोताओं की प्रतिक्रिया संभाल सके। काम थोड़ा उबाऊ था, लेकिन कार्यक्रमों पर लोगों की भिन्न भिन्न राय पढ़कर मजा भी आता था। माँ बाप भी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि जो मिलता था उसमें मेरा आने जाने का खर्च ही निकल पाता था।
तो फिर आप किस्सा गोई तक कैसे पहुंची?
किस्सा गोई का किस्सा ये है कि बचपन में जब माँ और पिताजी दोनों काम पर होते थे, तब मेरी देखभाल पड़ोस की एक महिला करती थी, जिन्हें मैं प्यार से नानी बुलाती थी। उनके पास किस्से कहानियों की खान थी। उन्हीं से सुन सुनकर मैं दोस्तों की महफिल में रौब जमाती थी। रेडियो स्टेशन के साथियों को भी इन किस्सों का चस्का लग गया और एक दिन एक बहुत ही लोकप्रिय शो के एंकर ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। फिर क्या था?
फिर क्या हुआ?
हमारे निदेशक ने मुझे एक नया शो शुरू करने को कहा, जिसमें मुझे लोकप्रिय गीतों को किस्से कहानियों में पिरोकर पेश करना था। मेरा शो इतना लोकप्रिय हुआ कि वो एक नई शैली बन गया। हर रेडियो स्टेशन ने उस तरह के शो करने शुरू किए, संगीत समारोहों और रंगारंग कार्यक्रमों का संचालन करने के न्योते आने लगे।
आपकी इस व्यस्तता और बाहर रहने पर घर वालों को कैसा लगता है?
बढ़ती व्यस्तता के साथ साथ मेरी आमदनी भी बढ़ी है, इसलिए माँ बाप बहुत खुश हैं। मेरे पति भी पत्रकार होने की वजह से मेरे काम की व्यस्तताओं को समझते हैं। वे स्वयं घटनाओं को रिपोर्ट करने बाहर जाते रहते हैं और अक्सर देरी से घर लौटते हैं। वे जानते हैं कि हमारे काम में कितने समय और ऊर्जा की जरूरत है।
एक सफल किस्सा गो बनने के लिए क्या किसी विशेष योग्यता की जरूरत है?
यदि आप में दूसरों की बात ध्यान से सुनने का हुनर नहीं है तो आप अच्छी किस्सा गोई नहीं कर सकते। किस्सा गोई को आप पढ़कर नहीं सुनकर ही सीख सकते हैं। लोग आमतौर पर अपने बड़े बुजुर्गों, अध्यापकों और पेशेवर कथकड़ों से किस्से कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं जो या तो हमारे अनुभवों से मेल खाते हों या रोचक शैली में सुनाए गए हों।
आजकल आप लोगों के बीच जाकर भी किस्सा गोई करती हैं, कैसा लगता है आपको?
किस्सा गोई का असली मजा लोगों के बीच जाकर कहने में ही है। सुनने वालों के हर्ष, शोक और विस्मय के चढ़ते उतरते स्वर किस्सागो के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होते हैं। स्टूडियो में बैठकर या मंच पर जाकर किस्से सुनाने की आदत की वजह से शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी घबराहट हुई थी, पर झिझक खुलते ही सब सहज हो गया। अब तो मैं सुनने वालों से भी कहती हूं कि अपने अपने किस्से सुनाएं।
अभ्यास 5 अब समाप्त हुआ। अब आपके पास अपने उत्तर अलग उत्तर पुस्तिका पर उतारने के लिए 6 मिनट हैं। 1 मिनट बाकी रह जाने पर हम आपको याद दिलाएंगे।
आपके पास एक मिनट और बचा है। परीक्षा का समय समाप्त हुआ।